वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज लोकसभा में वर्ष 2024-25 का आम बजट पेश किया। ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है। श्रीमती सीतारामन ने सातवीं बार बजट पेश किया है। व्यक्तिगत आयकर दरों में नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन यानी मानक कटौती को 50,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये कर दिया गया है। पेंशन भोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रूपये से बढ़ाकर 25,000 रूपये करने का प्रस्ताव है। नई कर व्यवस्था में कर दर संरचना में भी संशोधन किया गया है। इससे नई कर व्यवस्था में वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रूपये तक की बचत हो सकेगी। बजट में रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहल के पैकेज की घोषणा की गई है।
The Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period with a central outlay of 2 lakh crore rupees. This year, I've made a provision of 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling.
रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाएं लागू की जाएंगी। रोजगार पाने वालों को नियुक्त करने में कर्मचारियों और नियोक्ताओं की सहायता के लिए सब्सिडी के रूप में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। दूसरी योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाएगा। तीसरी योजना नियोक्ताओं पर केन्द्रित होगी। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए 5 वर्षों में हब और स्कोप व्यवस्था में 1,000 आईटीआई का उन्नयन किया जाएगा। इससे 20 लाख छात्रों के लाभान्वित होने की आशा है। वित्त मंत्री ने कहा कि शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप कार्यक्रम के अंतर्गत 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। 5,000 रूपये के मासिक वेतन के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप लागू की जाएगी।
Internship in top companies. As the 5th scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment.
बजट में मोबाइल, पीसीबीए और मोबाइल चार्जर पर कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% करने का प्रस्ताव किया है। कैंसर रोगियों को राहत प्रदान करने के लिए 3 और दवाइयों को सीमा शुल्क से पूर्ण छूट दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। सोने और चांदी पर सीमा शुल्क को घटाकर 6% करने तथा प्लैटिनम पर सीमा शुल्क घटाकर 6.4% करने का प्रस्ताव है। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट कर दर 40 से घटाकर 35% की गई है। ग्रामीण बुनियादी ढांचे सहित समग्र ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। अगले 2 वर्ष में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान चलाएगी। महिला नीति विकास को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं और बालिकाओं के लिए लाभकारी योजनाओं पर 3 लाख करोड़ रूपये से अधिक का आवंटन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 2रे चरण में सरकार 1 करोड़ शहरी निर्धन और मध्यम वर्गीय परिवारों को की आवास जरूरतें पूरी करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की जाएगी। अमृतसर, कोलकाता औद्योगिक गलियारे के संबंध में गया में औद्योगिक क्षेत्र के विकास में सहायता प्रदान की जाएगी। इस गलियारे से पूर्वोत्तर क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रूपये की राशि की व्यवस्था की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये बजट विकसित भारत के लिए है जो चहुंमुखी विकास सुनिश्चित करता है। ये समाज के हर वर्ग को लाभ पहुंचाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं की घोषणा की है जिससे देश में करोड़ों नई नौकरियां सृजित होंगी।
इस बजट में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की है। इससे देश में करोड़ों करोड़ों नए रोजगार बनेंगे। इस योजना के तहत जीवन में पहली नौकरी पाने वाले युवा की पहली तनख्वाह हमारी सरकार देगी।
श्री मोदी ने कहा कि बजट नए अवसर, नई ऊर्जा, नए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर लेकर आया है। श्री मोदी ने कहा कि बजट में घोषित नई योजना से एमएसएमई के लिए ऋण की सुगमता बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि ई कॉमर्स, निर्यात केंद्र और खाद्य गुणवत्ता का परीक्षण एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम को नई गति देगा। रक्षा क्षेत्र में रिकॉर्ड निर्यात पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र बनाने के लिए कई प्रावधान शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति दुनिया का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है, जिससे पर्यटन उद्योग के लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय बजट 2024-25 में रेलवे के लिए आवंटन को ऐतिहासिक बताया है। श्री वैष्णव ने कहा कि रेलवे के लिए बजट में अब तक का सबसे अधिक 2,62,200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। श्री वैष्णव ने कहा कि कुल बजटीय आवंटन में से 1,08,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सुरक्षा संबंधी गतिविधियों के लिए आवंटित की गई है। उन्होंने बताया कि 2014 से पहले कुल बजटीय आवंटन केवल 35,000 करोड़ रुपए था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बजट उन्नत बुनियादी ढांचे, नवाचार और अगली पीढ़ी के सुधारों के साथ एक समृद्ध भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, जिससे समाज के हर वर्ग का विकास हो रहा है। श्री गडकरी ने बजट को एक दूरदर्शी दस्तावेज और एक गतिशील प्रारूप बताया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यह एक बेहतरीन बजट है, जिसमें सरकार ने 9 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित किया है। श्री गोयल ने कहा कि आने वाले वर्षों में यह बजट भारत को विकास के पथ पर ले जाएगा। उद्योग जगत ने बजट का स्वागत किया है। एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने बजट को सभी बिंदुओं को संतुलित बजट बताया है। श्री सूद ने कहा कि बजट विकास के अनुरूप है और ये विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगा।
जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए हैं, लैंड रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ ओवरऑल प्रोसेसेस, वेदर इट इज डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, आई थिंक ये सब चीजों को लेकर आप एक 5 साल के व्यू से अगर चलते हैं, सो दिस इज अ बिल्डिंग ब्लॉक टूवर्ड्स द टारगेट दैट यू हैव ऑफ 2030 ऑफ $10 ट्रिलियन कंपनी।
फिक्की के अध्यक्ष अनीश शाह ने कहा कि ये बजट विकासोन्मुख है, ये युवाओं, महिलाओं और किसानों सहित कई क्षेत्रों पर केंद्रित है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष संजीव पुरी ने कहा कि यह बजट अर्थव्यवस्था की वृद्धि को गति देगा। बजट में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कृषि, बुनियादी ढांचा, कौशल, प्रौद्योगिकी, नवाचार और व्यापार सुगमता सहित विभिन्न क्षेत्रों का ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट में बिहार के लिए विशेष आर्थिक पैकेज के प्रस्ताव का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र के विकास के प्रावधान और बाढ़ से लड़ने की पहल सराहनीय है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री किंजारापू राममोहन नायडू ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि आंध्र प्रदेश और पोलावरम परियोजना के विकास के लिए महत्वपूर्ण प्रावधानों की घोषणा की गई है। विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें आय असमानता दूर करने के लिए कुछ नहीं किया गया है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि बजट में मनरेगा का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने बजट से एंजल टैक्स हटाए जाने का स्वागत किया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को हल करने में विफल रहा है और बजट में किसानों के लिए कोई भी ठोस योजना नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2024 की परीक्षा रद्द करने और इसे दोबारा आयोजित करने का आदेश देने से आज इंकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि यह साबित करने का कोई प्रमाण नहीं है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ था और परीक्षा के संचालन में प्रणालीगत खामियां थीं, जिससे पूरी परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई। न्यायालय ने यह भी कहा कि दोबारा परीक्षा कराने के गंभीर परिणाम होंगे। ऐसा करने से 23 लाख से अधिक छात्र प्रभावित होंगे और शैक्षणिक कार्यक्रम बाधित होगा। आने वाले वर्षों में इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के तहत देशभर में 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से पीने का पानी उपलब्ध करा दिया गया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। मिशन के तहत यह काम तेजी से किया गया, जिससे 2019 से लेकर 2024 के बीच 5 साल के भीतर 15 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।